ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आत्मनित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रिय स्वदृग्हेतु व्यापको संज्ञनावृतः। एते द्वादश वीरविद्वान् आत्मनो लक्षणे परे अहम् ममेत्यसम् असद्भावम् देहादौ मोहजं त्यजेत्। शब्दात् आत्मा, आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश, नित्य जन्म या मृत्यु से रहित, अव्यय क्षीण होने की संभावना से रहित, शुद्ध आसक्ति तथा विरक्ति के भौतिक कल्मश से रहित, एक अकेला क्षेत्रज्ञ जानने वाला, अतएव भौतिक शरीर से पृथक, आश्रय मूल आधार, अविक्रिय शरीर की तरह परिवर्तन नहीं होते, स्वदृग आत्म प्रकाशित, हेतु समस्त कारणों के कारण, व्यापक चेतना के रूप में सारे शरीर में फैला हुआ, असंग असंग की शरीर पर आश्रित न रहकर, अनावृत भौतिक कल्मश के द्वारा आच्छादित नहीं, एते इन सबों के द्वारा द्वादश भी बारह विद्वान व्यक्ति जो मूर्ख नहीं है अपितु वस्तुओं के यथारूप से परिचित हैं, आत्मनः आत्मा के लक्षणे लक्षणों से परे दिव्य अहम् मैं यह शरीर हूँ, ममा मेरा इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, इति इस प्रकार असद्भावम् जीवन की मिथ्या धारणा, देह आदौ अपनी पहचान भौतिक देह से और फिर अपनी पत्नी संतान परिवार या जाति राष्ट्र इत्यादि से करना, मोहजम मोहमय ज्ञान से उत्पन्न, त्यजेत त्याग देना चाहिए। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है, ये दोनों ही आध्यात्मिक हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त है तथा क्षय से रहित एवं भौतिक कल्मश से भी मुक्त है, ये व्यष्टि हैं, यह बाह्य शरीर की ज्ञाता हैं, प्रत्येक वस्तु के आश्रय या आधार हैं, ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त हैं, ये आत्म प्रकाशित हैं, ये समस्त कारणों के कारण हैं तथा सर्वव्यापी हैं, इन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव ये सदैव उन्मुक्त रहते हैं, इस दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए, जिसमें वह सोचता है मैं यह भौतिक शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं, अतएव सारे जीव गुणात्मक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान हैं। जो कि समस्त जीवों के नायक अर्थात परम प्रधान हैं। वेदों में कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, भगवान प्रधान जीव हैं, अधीन जीवों के नायक हैं। चूंकि सारे जीव ईश्वर के प्रतिरूप या अंश हैं, अतएव उनके गुण परमेश्वर के गुणों से भिन्न नहीं होते। जीवों के गुण भगवान जैसे होते हैं, जिस प्रकार समुद्र के एक बूंद की रासायनिक संरचना स्वयं विशाल समुद्र जैसी होती है, इस तरह गुण में एकत्व किंतु मात्रा में अंतर होता है। कोई व्यक्ति नमूने के रूप में जीव को समझकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है, क्योंकि ईश्वर के सारे गुण जीवों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो एकत्व होता है किंतु ईश्वर महान है जबकि जीव अत्यंत क्षुद्र है। अनोर अनियान महतो महियान, सारे जीव परमाणु से भी छोटे हैं किंतु ईश्वर महानतम से भी महान है। महानता संबंधी हमारी धारणा को आकाश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि हम आकाश को असीम रूप से विशाल मानते हैं किंतु ईश्वर आकाश से भी विशाल है। इसी प्रकार हमें ज्ञात है कि सारे जीव अणुओं से भी छोटे हैं, आकार में बाघ की नौ के 10,000वें भाग के तुल्य। फिर भी जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों में समस्त कारणों के परम कारण होने का गुण पाया जाता है। निस्संदेह जीव की उपस्थिति के कारण ही शरीर का अस्तित्व है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड के भीतर परमेश्वर के होने से ही भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित परिवर्तन घटित होते हैं। एकह शब्द महत्वपूर्ण है, जैसे कि भगवद्गीता में बताया गया है मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः, प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, जिसमें पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तथा जीव सम्मिलित हैं, आत्मा के पद पर स्थित हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उद्भूत है, किंतु कोई यह नहीं न सोचे कि परम भगवान किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है। ईश्वर तथा जीव दोनों ही पूर्णतया चेतनामय हैं। जीवों के रूप में हम अपने शारीरिक अस्तित्व के प्रति सचेत हैं, इसी प्रकार भगवान विराट दृश्य जगत के प्रति सचेत हैं। इसकी पुष्टि वेदों से होती है। वैदिक आदेश सिद्ध करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा लघु आत्मा दोनों व्यष्टि हैं, एक महान है और दूसरा क्षुद्र, किंतु दोनों ही समस्त कारणों के कारण हैं, दैहिक रूप से सीमित किंतु वैश्विक दृष्टि से असीम। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि हम गुण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान हैं, किंतु मात्रा में कभी भी उनके तुल्य नहीं हैं। अल्पज्ञ व्यक्ति अपने आप को गुण में ईश्वर के समान पाकर मूर्खतावश यह सोचने लगते हैं कि मात्रा में भी वे उन्हीं के तुल्य हैं। उनकी बुद्धि अविशुद्ध बुद्धयः अर्थात असंस्कृत या कल्मषग्रस्त बुद्धि कहलाती है। जब ऐसे लोग अनेक जन्मों तक परम कारण को समझने का प्रयास करने के बाद वासुदेव कृष्ण का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं तो वे उनकी शरण में जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रकार वे महात्मा बन जाते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ लेता है, यह जान लेता है कि ईश्वर महान है विभु और आत्मा लघु अनु है, तो वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त माना जाता है। जब मनुष्य यह सोचता है कि वह भौतिक शरीर है और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु उसकी है, तो वह अंधकार में रहता है। यह अहम मम जनस्य मोहयम अहम ममेति है, यह माया है। उसे अपनी भ्रांत धारणा त्याग कर हर एक वस्तु से पूर्णतः अवगत हो जाना चाहिए। तो यहां पर श्री प्रहलाद महाराज आत्मा और परमात्मा के बारे में बता रहे हैं और बहुत ही विस्तार रूप से इन दोनों के गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आत्मा और परमात्मा में ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहां एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया है, आत्मा, और इस अनुवाद में आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है। तो एक ही शब्द है आत्मा, लेकिन दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों का सूचक है, और इसलिए ऐसे श्लोकों को पढ़कर मायावादी लोग कहते हैं प्रहलाद महाराज ने तो हमें ही सपोर्ट किया है। देखो, जो आत्मा है वो जीव और परमात्मा दोनों एक ही है, क्या अंतर है, दोनों के गुण भी एक ही है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, आचार्यगण समझाते हैं कि हालांकि गुणात्मक रूप से आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं, लेकिन मात्रा में अंतर है। जय श्री श्री राधे रमन की, जय श्री कृष्ण बलराम। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान के 50 गुण हैं, और यह जो 50 गुण जो हैं वह जीव में भी पाए जाते हैं। जब एक जीव पूरी तरह से शुद्ध होता है तो फिर वो जो 50 गुण हैं वो 50 गुण पूरी तरह से उस जीवात्मा में विकसित होते हैं। लेकिन फिर भी मात्रा में वो भगवान से बहुत कम है। हालांकि वो सब गुण हम शुद्ध भक्तों में भी पा सकते हैं, लेकिन फिर भी मात्रा में कम है। और 5 गुण जो हैं वह ब्रह्मा जी और शिव जी में पाए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी और शिव जी में टोटल 55 गुण हैं, और फिर नारायण भगवान के पास और 5 हैं, तो नारायण के पास टोटल 60 गुण होते हैं, और केवल कृष्ण में और 4 गुण पाए जाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण हैं। लेकिन जो 50 गुण हैं, जो पहले 50 गुण जो है वह दोनों भगवान और जीव में भी पाए जा सकते हैं। जब जीव पूरी तरह से शुद्ध होता है तो वो 50 गुण आते हैं, लेकिन फिर भी नित्य रूप से वो मात्रा में कम है। वो उस हद तक भगवान के समान जीव कभी नहीं बन सकता है। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी एक मायावादी से वार्तालाप कर रहे थे, तो मायावादी कह रहा था कि जीव और भगवान समान है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो उस समय ठंडी का मौसम था, और ये जो मायावादी व्यक्ति था वो एक कोट पहना हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने उस कोट का एक धागे को पकड़कर उन्होंने कहा कि आप इतने बड़ा कोट क्यों पहने हो, एक धागा पहन लो ना, क्या अंतर है, ये पूरा कोट जो है और एक धागे में क्या अंतर है, एक धागा पहनकर आप इस ठंडी में मौसम में रहो, कोट की क्या आवश्यकता है। तो मायावादी कहने लगा, नहीं, ये कोट की आवश्यकता है, ठंडी का मौसम है। प्रभुपाद इतना क्रोधित हो गए, प्रभुपाद जी वो कोट को पकड़ लिया उन्होंने, प्रभुपाद जी ने कोट को पकड़कर उसको हिला रहे थे, इस कोट को छोड़ दो, फिर कोट क्यों चाहिए आपको, मैं एक धागा देता हूं आपको। और एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी एक मायावादी से चर्चा कर रहे थे, तो बीच में ही उसको बाथरूम जाना था, तो प्रभुपाद जी कहने लगे, अगर आप भगवान हो तो आपको क्या जरूरत है, आप कंट्रोल कर लो। तो वो कहने लगे, नहीं 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 मुझे जाना है स्वामी जी, मुझे जाना है। लेकिन प्रभुपाद जी कहने, नहीं नहीं आप कंट्रोल कर लो, आप तो परम भगवान है, परम नियंत्रक है, क्या समस्या है। तो इस तरह प्रभुपाद जी अक्सर इन मायावादियों से वाद विवाद करते थे, और हम देखते हैं उनके तात्पर्यों में भी इस मायावादी का खंडन करने में आचार्यगण बहुत आनंद लेते हैं, क्योंकि हमारे जो आचार्यगण हैं पूरी तरह से यह स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान जो है वो जीव से महान है, जीव और भगवान कभी भी एक नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जब जीव सोचता है कि मैं शरीर हूं, इसको कहा जाता है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। तो हम देखते हैं कि सृष्टि के समय ब्रह्मा जी अपना जो छाया है, छाया से अज्ञान को उत्पन्न करते हैं। पांच प्रकार के अज्ञान को वो उत्पन्न करते हैं। कौन से ये पांच प्रकार? एक है तमिश्र। तमिश्र का मतलब है क्रोध या द्वेष। तो हम देखते हैं कि जीव इस भौतिक जगत में क्यों आता है। जब जीव भगवान से द्वेष करने लगता है और वो सोचता है कि केवल भगवान भगवान क्यों आनंद लूट रहे हैं, मुझे भी उसी प्रकार भोग करना चाहिए। तो जब जीवात्मा भगवान से द्वेष करने लगता है तो तुरंत क्या होता है, उसे इस भौतिक दुनिया में भेजा जाता है। इच्छा द्वेष समुत्ते न द्वंद्व मोहे न भारत। तो उसको कहते हैं तमिश्र। दूसरा है अंधतमिश्र। अंधतमिश्र का मतलब यह है कि यह धारणा या यह सोचना कि मृत्यु से सब कुछ समाप्त होता है, मृत्यु के बाद कुछ है ही नहीं। तो भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति ने इस तत्व ज्ञान को स्थापित किया। क्या कौन कौन था वो? चार्वाक। तो चार्वाक मुनि ने कहा कि इस जीवन के बाद क्या है, कुछ है ही नहीं, सब खत्म होता है, तो इसलिए इस जीवन में अच्छा खाओ पियो मजा करो, अगले जीवन कौन देखा है। तो इसको कहते हैं अंधतमिश्र, यह सोचना कि मृत्यु के साथ सब कुछ अंत होता है। तीसरा है तमस। तमस का मतलब है यह नहीं जानना कि मैं आत्मा हूं। तो लोगों को पता ही नहीं कि आत्मा जैसे कुछ शक्ति है। प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, इतने सारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, लेकिन कहीं भी यह शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है कि मैं आत्मा हूं। और इसके वजह से जो चौथा अज्ञान वो उत्पन्न होता है वो है मोह। मोह का मतलब है कि यह समझना कि मैं शरीर हूं, क्योंकि वो नहीं जानता है कि मैं आत्मा हूं, तो वो सोचता है कि मैं शरीर हूं, उसको कहते हैं मोह। और इस मोह की वजह से वह सोचता है कि मैं शरीर हूं और जितने भी सब चीज हैं शरीर से संबंधित वो सब मेरा है। जैसे कि प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में सब लोगों का यही विचार है कि मैं शरीर हूं और जो भी इस शरीर के साथ संबंधित हैं वो सब मेरे हैं और मेरे वो सब मेरे भोग्य वस्तु हैं, मेरे भोग के लिए है सब, उसको कहते हैं मोह। और पांचवा है महामोह। तो महामोह का मतलब यह है कि वह मोह इतना बढ़ जाता है कि वह इंद्र तृप्ति के पीछे पागल हो जाता है और वह सोचता है कि केवल इंद्र तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पांच प्रकार के अज्ञान हैं और इसके वजह से हम देखते हैं कि दुनिया के लोग यह सोचते हैं कि हम शरीरी हैं, हम आत्मा नहीं हैं, आत्मा को किसने देखा है। तो इस अज्ञान के वजह से, इस मोह के वजह से लोग सोचते हैं कि बस इस दुनिया का हेतु एक ही है, वह है जैसे कि भगवान बताते हैं असुरों का लक्षण काम हेतु। वह सोचते हैं कि इस सृष्टि का, इस दुनिया का एक ही लक्ष्य है, वह है काम, अपनी काम वासनाओं को पूर्ति करना वह एकमात्र लक्ष्य है और कोई लक्ष्य है ही नहीं। और इसलिए जब ऐसे लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं भगवान है, हम भगवान के अंश हैं, तो समझना बहुत ही मुश्किल होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि एक बार एक छोटा सा लड़का था और लड़के को एक बॉयल हुआ था, फोड़ी। तो बहुत दर्द कर रहा था, तो पिताजी ने कहा कि देखो डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, बाकी लोग रिश्तेदार इत्यादि मित्र कहने लगे नहीं नहीं कुछ जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप चला जाएगा, कुछ दवाई लगाएंगे चला जाएगा। पिताजी ने कहा नहीं नहीं वो और बढ़ेगा, फिर दर्द और बढ़ेगा, तो इसलिए अच्छा है कि अब अभी उसको डॉक्टर लेकर जाए। तो ठीक है, जबरदस्ती उनको डॉक्टर लेकर गए पिताजी। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा देखो छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। तो लड़के ने कहा क्या काटने वाले हैं? नहीं 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 ये तो संभव नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। तो लड़के जो है उन्होंने अपने सब मित्र इत्यादि को बुलाकर कहने लगे कि देखो देखो ये डॉक्टर क्या कर रहा है, ये चाकू लेकर मुझे मार रहा है, कैसे डॉक्टर है ये, मैं इसको पुलिस के पास दे दूंगा, इसको देखो क्या कर रहा है, मुझे मार रहा है चाकू लेकर। तो लेकिन फिर भी पिताजी ने उसको जबरदस्ती पकड़कर फिर वो डॉक्टर ने उस फोड़ी को काट दिया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यह कहानी इसलिए बताते हैं, यह समझाने के लिए कि भद्र जीवात्मा जो है, हम सब बीमार हैं इस दुनिया में। बीमारी क्या है? अज्ञानता। बीमारी यह है कि यह सोचना कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं, यह जो देहात्म बुद्धि जो है यह एक बीमारी है। और जब भक्तगण हमें इस बीमारी को दूर करने के लिए दवाई देने का प्रयास करते हैं तो जो बद्ध जीवात्मा होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, दवाई लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो सोचते हैं कि ये लोग तो मुझे हानि पहुंचा रहे हैं, मेरा जो इंद्र तृप्ति है इसको खत्म कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यह जो अहम ममेति जो है, मैं और मेरा। तो जब हम इस आत्मा का ज्ञान को नहीं समझते हैं तब तक यह मैं और मेरा यह चलता रहेगा। तो हम सोचते हैं कि यह शरीर मेरा है, वास्तव में देखा जाए तो यह शरीर भी हमारा नहीं है। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि हम यह शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, यह मेरा शरीर है, मुझे मैं कंट्रोल करता हूं उसको। सही बात है ना? जो खुद का शरीर जो है इसको भी हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, और यह जो शरीर है यह भी हमारा नहीं है। जब श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे और बीच में जारिकन जंगल से गुजर रहे थे, तो वहां पर कुछ खराब पानी पीने की वजह से उनके शरीर में कुछ व्याधि हो गई जिसके बहुत सारे फोड़े आ गए उनके शरीर पर। तो लेकिन जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, महाप्रभु से मिले, तो महाप्रभु हमेशा उनको आलिंगन करते थे। उनको बहुत खराब लगा क्योंकि जो भी खून और पस जो था वो महाप्रभु के शरीर को लग रहा था, स्पर्श कर रहा था, तो सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लग रहा था। और वो सोच रहे थे कि ये शरीर जो है इसका क्या लाभ है, यह केवल इससे महाप्रभु का जो सुंदर शरीर है वो दूषित हो रहा है, इसलिए मैं शरीर का अंत करूंगा, आत्महत्या करूंगा। तो इसलिए जब रथ यात्रा निकलेगी तभी मैं इस शरीर को जगन्नाथ जी के रथ के सामने इस शरीर को फेंक दूंगा और इस शरीर को अंत कर दूंगा, ऐसे वो सोच रहे थे। तो एक दिन अकस्मात श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के पास आते हैं और कहते हैं, हे सनातन, क्या आप सोचते हैं कि यह शरीर आपका है? क्या आत्महत्या करने से आप भगवान को पा सकते हैं? अगर आत्महत्या करने से हम भगवान को पा सकते हैं तो मैं यह शरीर को हजार बार समाप्त करने के लिए मैं तैयार हूं। समझिए। और फिर हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि देखिए ये किस प्रकार का सज्जन व्यक्ति है जो दूसरों का संपत्ति है उसको नाश करना चाहता है। और फिर सनातन से कहते हैं कि इस शरीर के द्वारा मैं अनेक अनेक सेवाओं को मैं आपको देना चाहता हूं, तो इसलिए ये जो आपका शरीर जो है वास्तव में आपका नहीं है। मैं इस शरीर के द्वारा वृंदावन के अनेक जो स्थली हैं उनको मैं चाहता हूं कि आप उनको ढूंढ निकालें और मंदिर की स्थापना करें और अनेक किताबों को लिखें। तो यह शरीर के द्वारा मैं चाहता हूं कि आप अनेक अनेक सेवाएं करें। तो महाप्रभु यह दिखाना चाहते थे कि यह जो शरीर भी जो है जो हम सोचते हैं कि मेरा है वो शरीर भी वास्तव में हमारा नहीं है। और फिर बाकी चीजों की बात ही क्या। लेकिन जब हम इस चीज को भूल जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूं और शरीर के जितने भी उपाधि हैं उन उपाधियों से हम पहचान लेते हैं। श्री प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि हम सोचते हैं कि मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, और यह जो मिथ्या अहंकार जो है अपने हृदय में इतने गूढ़ रूप से बैठा हुआ है कि उसको निकालना बहुत ही कठिन होता है। और इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी यह जो मिथ्या अहंकार जो है यह जाना बहुत ही कठिन होता है। अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो अहंकार की वजह से हम क्या सोचते हैं कि मैं करता हूं। तो यहां पर इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कैसे भगवान और जीव दोनों में बहुत सारे गुण समान हैं, लेकिन मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। तो जीव भी हम देखते हैं कि जीव भी बहुत सारे चीजों का निर्माण करता है। जैसा कुछ बड़ा फैक्ट्री बनाना, प्लेन बनाना, हाँ, या कुछ सैटेलाइट बनाना, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज भी करता है। लेकिन भगवान कितने सारे ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं, और ऐसे ब्रह्मांड जो हवा में तैर रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम कहाँ है उसका? किसी ने देखा है कंट्रोल सिस्टम? एक्सपुटनिक अगर भेजते हैं तो कुछ हजारों वैज्ञानिक बैठकर उसको कंट्रोल करते हैं। बहुत बड़ा कंट्रोल सिस्टम होता है उसका। तो इतने हजारों लाखों ब्रह्मांड हैं, तो क्या इसके लिए कंट्रोल सिस्टम की जरूरत नहीं है? कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हालांकि हम छोटे 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 चीज का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन भगवान इतने बड़े बड़े चीजों का निर्माण करते हैं। तो सामान्यतः है, लेकिन अंतर भी बहुत सारा है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इस देहात्म बुद्धि में रहते हैं, तब तक हम सोचते हैं कि मैं भी कुछ महान हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस मिथ्या अहंकार के कारण लोग क्या करते हैं, वो भगवान को चैलेंज करते हैं। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भगवान को चैलेंज कर रहे हैं कि भगवान ने क्या किया, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हालांकि वो इस प्रकार कहते हैं, लेकिन उनका जो भी उन्होंने किया है, हालांकि वो सोचते हैं कि हमने बहुत सारे चीज किया है, बहुत बड़े बड़े चीज किया है, लेकिन केवल प्रकृति के एक छोटी सी इच्छा से सब कुछ नाश हो सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर इसके लिए भी एक कहानी बताते हैं। तो एक बार एक मेंढक था, फ्रॉग। तो मेंढक को रास्ते पर एक रुपये का सिक्का मिला। तो जब एक रुपये का सिक्का मिला, मेंढक ने सोचा कि अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया, मुझसे अमीर कोई है ही नहीं। तो बहुत गर्व के साथ वह रास्ते पर जा रहा था और सबको दिखा रहा था कि देखो मेरे पास एक रुपए का सिक्का है, मैं कितना अमीर हो गया है। तो कुछ समय के बाद कुछ दूरी से एक हाथी आ रहा था। तो जब हाथी आ रहा था रास्ते पर, तो मेंढक चिल्लाने लगा, हाथी हट जाओ, मैं सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं, हट जाओ यहां से, रास्ते से। अभी हाथी क्या सुनने वाला है, हाथी तो चलता रहा। और जब मेंढक के पास आ गया हाथी, तो और जोर से चिल्लाने लगा मेंढक, हट जाओ यहां से। तो हाथी चलता रहा और भाग्यवश वो बच गया हाथी के पैर से। लेकिन जब हाथी थोड़ा आगे चला, तो पीछे से बहुत सारा मलमूत्र किया हाथी ने, जो वो मेंढक के ऊपर गिरकर सबसे अमीर आदमी का अंत हो गया। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर यह कहानी बताते हैं समझाने के लिए कि वैज्ञानिक का हाल भी वैसे ही है। बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, कहाँ है भगवान, देखिए हमने क्या नहीं किया है। लेकिन जब समुद्र में थोड़ा सा हलचल होता है, एक सुनामी आता है, तो क्या कर सकते हैं। तो जापान में भूकंप आ गया, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है वहां, क्या कर सके। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो जीवात्मा जो है वो केवल क्षुद्र है, इनसिग्निफिकेंट, भगवान की मानता के सामने हमारा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी यह अध्यात्म बुद्धि के कारण हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े महान हैं। तो इसलिए हम देखते हैं अर्जुन युद्धभूमि पर ऐसे महान महान योद्धाओं को पराजित किया, जैसे कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म इत्यादि। लेकिन वही अर्जुन युद्ध के बाद जब भगवान के रानियों को द्वारका से हस्तिनापुर ला रहे थे, कुछ ग्वाले के साथ वो पराजित हो गए। और अर्जुन सोच रहे थे ये कैसे हुआ, मैं वही अर्जुन हूं, वही गांडीव है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, फिर मैं कैसे पराजित हुआ। और फिर वो समझ गए केवल भगवान की कृपा से मैं उस युद्ध भूमि पर जो तिमिंगला के समान महान योद्धा थे, महारथी थे कर्ण, भीष्म इत्यादि, उनको मैं पराजित कर सका। लेकिन अब भगवान चले गए और जो भगवान ने दिया वो जो शक्ति है वो भी चला गया। तो यह समझना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो केवल जो विमूढ़ लोग हैं, जैसे कि यहां श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, केवल विमूढ़ लोग हैं वह सोचते हैं कि मैं करता हूं इस देहात्म बुद्धि के वजह से। तो इसलिए यह समझना अत्यंत जरूरी है कि केवल भक्ति के द्वारा हम इस मिथ्या अहंकार को हम दूर कर सकते हैं। अगर यह जो मिथ्या अहंकार जो है, मिथ्या अहंकार का मतलब है यह सोचना कि मैं शरीर हूं और जो भी शरीर के साथ संबंधित है वो मेरा है, मैं और मेरा, अहम ममेति, अगर इसको दूर करना है तो जब हम भक्तिमय जीवन में लगते हैं और इस तत्व ज्ञान को जब हम ठीक से समझते हैं कि कैसे भगवान महान है, कैसे भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, मेरे पास कुछ शक्ति है ही नहीं, जब हम इस तत्व ज्ञान को हम ठीक से समझेंगे तभी वास्तव में हम नम्र होकर हम इस सिद्धांत को वास्तव में हम समझ सकते हैं। तो एक है ज्ञान, तो इन शास्त्रों को पढ़कर हमें इस ज्ञान को जरूर प्राप्त करना चाहिए कि कैसे भगवान महान है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि दसवें स्कंद से पहुंचने से पहले ये नौ स्कंद जो है उनको ठीक से पढ़ना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से विश्वास के साथ इस तत्व ज्ञान को समझे कि कैसे भगवान परम ईश्वर है, परम कारण है। लेकिन केवल ज्ञान ही नहीं, अगर हमें साक्षात्कार को प्राप्त करना है, विज्ञान को प्राप्त करना है, तो उस ज्ञान के आधार पर हमारा जीवन बिताना यह अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो भक्तिमय जीवन में आने के बाद भी हम वही चीज में अटक कर रहेंगे, मैं और मेरा। तो यह जो देहात्म बुद्धि है भक्तिमय जीवन में भी रह सकता है, जब हम केवल स्वार्थ के साथ केवल मैं और मेरा इसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन वैष्णव का मतलब है कि निस्वार्थ होकर अन्यों के बारे में सोचें, बाकी वैष्णव के बारे में सोचें, भगवान के बारे में सोचें, भगवान के साथ हरे का संबंध देखें। जब हम यह समझेंगे कि हरेक जीव का भगवान के साथ संबंध है, तो फिर हम समझेंगे यह जो पूरा वैष्णव परिवार जो है वो एक परिवार है। नहीं तो हम अलग अलग उपाधियों को लेकर हम सोचेंगे कि यह मेरा है, मेरा मंदिर है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो ये अलग अलग विभाजन करेंगे हम, मैं और मेरा। मैं सीनियर भक्त हूं, तुम जूनियर हो, 10 दिन जूनियर हो, मैं 10 दिन सीनियर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, इत्यादि। ये सब देहात्म बुद्धि के कारण है। लेकिन जब हम समझेंगे कि वास्तव में हमारा एक ही उपाधि है, क्या है वो, गोपी बतूर पद कमली और दास दास अनुदास, वह एक ही उपाधि है। और जो भी बाकी के जितने भी उपाधि हैं वह केवल सेवा मात्र के लिए हैं। तो सेवा के लिए कोई टेंपल प्रेसिडेंट बनता है, कोई जीबीसी बनता है, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनता है, लेकिन जितने भी उपाधियां जो है वह केवल सेवा के लिए है। हमारे एकमात्र उपाधि क्या है, हम केवल दासों के दास है, बस एक ही उपाधि है और कोई उपाधि नहीं है। तो जब हम इस सिद्धांत को समझेंगे, क्योंकि जितने भी उपाधि हैं वो केवल शरीर से संबंधित है, जब ये शरीर चला जाएगा तो क्या वो उपाधि रहेगा, कुछ उपाधि नहीं रहेगा। तो जब हम इस सिद्धांत को समझेंगे तो वास्तव में हम हमारे जीवन में हम नम्रता को ला पाएंगे, और उस जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, उस नम्रता से हम हमेशा जो हरि नाम है वो ले पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब इस सिद्धांत के आधार पर जब हम जीवन जिएंगे तो वास्तव में यह जो ज्ञान जो है वह विज्ञान के रूप में परिवर्तित होगा, नहीं तो वह केवल ज्ञान ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसको एक प्रश्न है तो कर सकते हैं। हाँ पूछ।
भगवान कृष्ण जो 16 करा संपूर्ण थे, ये 16 कला कौन सा है?
16
भगवान कृष्ण 16 कला पूर्ण है भारत में, अक्सर सब
16 कला।
हाँ, ये कौन सा 16 कला है? 64 कलाओं में से है या कुछ क्या है, कभी सुना नहीं।
भगवान के तो 64 कला है, आप कृष्ण बुक में पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं 64 कला। और किसको कुछ प्रश्न है?
हरे कृष्ण। जो मायावादी लोग होते हैं क्या वो देहात्म चेतना से ऊपर उठते हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं कि हम ब्रह्म पे ध्यान लगाते हैं।
तो जो मायावादी लोग हैं और जो ज्ञानी लोग हैं, उनका गुण, उनका जो ज्ञान जो है वो सत्वगुण का ज्ञान है। तो सत्वगुण का ज्ञान का मतलब है वो समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन जो मायावादी लोग हैं वो सोचते हैं कि ये जो आत्मा जो है वह आत्मा परमात्मा बन सकता है। तो इस क्योंकि वो समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो इसलिए हम देखते हैं कि मायावादी लोग भी बहुत तपस्या इत्यादि करते हैं। लेकिन क्योंकि वह यह गलत धारणा है कि आत्मा परमात्मा बन सकता है, तो इसलिए वह उनका जो देह जो है या उनका जो लक्ष्य जो है वो केवल नरक ही होता है। लेकिन जो ब्रह्मवादी लोग हैं, ब्रह्मवादी लोग वो समझते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है, वो सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है वो परम है। लेकिन वह अपराध नहीं करते भगवान का, वो यह नहीं कहते कि भगवान या जीव भगवान बन सकता है या भगवान का जो शरीर है वो माया है। तो क्योंकि वो भगवान का अपराध नहीं करते, तो इसलिए जो ब्रह्मवादी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ब्रह्म ज्योति को पा सकते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की समवेद गौर भक्त वृंद की नदाय गौर प्रेमानंदे।